हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सच में तुम सही कह रही हो क्या अक्षत? अब मैं घर से बाहर कहीं भी जा सकती हूँ और मुझे अब उस आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं है जो मेरे पीछे लगा हुआ था। अक्षत के घर के गार्डन में उसके साथ खड़ी नैना उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद और खुशी से पूछती है। हाँ बिल्कुल, अभी तो अमित का फ़ोन आया था और उसने मुझे बताया कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम और पुलिस वालों ने मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया है। अक्षत नैना की तरफ देखकर बोलता है और साथ में अपने चारों तरफ इधर उधर ही देखता रहता है। थोड़ी दूर पर ही कुछ और बॉडीगार्ड, वॉचमैन और गेटकीपर के साथ कुल मिलाकर 7-8 लोग वहाँ घर की बाउंड्री से लगकर सिक्योरिटी के लिए तैनात थे। अच्छा, कौन था वो आदमी? ज़रूर कोई साइको इंसान होगा, नहीं तो जिस तरह से उसने मुझे किडनैप करवाया वैसा कोई नॉर्मल आदमी तो करता नहीं। लेकिन अक्षत, मुझे ना एक एक बात अभी भी समझ नहीं आई। नैना कन्फ्यूज सी अक्षत की तरफ देखते हुए एक और सवाल करती है। अक्षत जैसे नैना के पहले सवाल को इग्नोर करना चाहता था, इसीलिए उसके दूसरे सवाल का जवाब देते हुए पूछता है, क्या समझ में नहीं आ रहा? यही कि फिर अभी भी इतनी सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पर? नैना भी उन एक्स्ट्रा गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड सबको नोटिस करते हुए अक्षत से पूछती है, अरे ये सब तो नॉर्मल है, भूल जाती हो क्या? मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ यार, और फिलहाल मेरी मूवी रिलीज हुई है और सबकी नज़र में मेरा नया नया रिलेशनशिप भी है, तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी चल रहा हूँ इस वक्त, तो इतनी सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है, नहीं तो न्यूज़ रिपोर्टर और वे ओवर पजेसिव और स्टॉक करने वाले फैंस क्या पता कब बाउंड्री वॉल फांद कर अंदर आ जाएं। अक्षत नैना की बात का जवाब देते हुए काफ़ी मजाकिया अंदाज में बोलते हुए मुस्कुराता है और फिर गार्डन में बड़ी बेंच पर बैठ जाता है। नैना उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन तो नहीं कर पाती, लेकिन इस बात को लेकर अब वो थोड़ी टेंशन फ्री थी कि अब उसके पीछे कोई भी नहीं है और वो अपने काम पर वापस जा सकती है। अगले दिन सुबह सुनैना का एग्ज़ाम होता है और वो टाइम से निकल जाती है क्योंकि आज वो लेट नहीं होना चाहती, और आज फिर से उसे विराज उसी तरह से उसका इंतज़ार करते हुए मिलता है, तो वो उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और एग्ज़ाम देने पर अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट करती है। उसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाता है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी तरह से प्रेपरेशन की थी, लेकिन विराज का ध्यान अभी तक कल वाली बातों में लगा हुआ था। उसे इस तरह आदित्य का कल कॉलेज जाना खटक रहा था और वो इस बारे में ही सुनैना से बात करना चाहता था, और साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि कहीं आज भी आदित्य कॉलेज न आ जाए। विराज ने जल्दी जल्दी अपना एग्ज़ाम खत्म किया और सुनैना के पीछे ही एग्ज़ाम हॉल से निकल आया, बाकी सारे स्टूडेंट से थोड़ा पहले ही, और पीछे से सुनैना को आवाज़ लगाते हुए बोला, हे सुनैना, एक मिनट रुको ना वहीं पर, कुछ बात करनी है तुमसे। ओ गॉड, इस विराज को समझ में नहीं आता है क्या? इसकी वजह से ही मैंने इतनी जल्दी अपना एग्ज़ाम फिनिश किया और जल्दी ही यहाँ से निकलने भी वाली थी, लेकिन नहीं, ये फिर भी पीछे लग गया। क्या करूँ मैं इसका, हे भगवान। विराज की आवाज़ सुनकर भी सुनैना रुकती नहीं, लेकिन उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है, और ये सब बातें अपने मन में सोचते हुए वो अपने सिर पर हाथ मारती है, और फिर कुछ सोचते हुए सुनैना एकदम से अपनी जगह पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। तब तक विराज फिर आज भी वहाँ पर आ जाता है और सुनैना की तरफ देखकर पता नहीं क्यों इतना खुश होकर मुस्कुराता रहता है, जबकि सुनैना को उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हो रही थी क्योंकि अब वो उसे इरिटेट करने लगा था। क्या है विराज, तुम्हें समझ में नहीं लाता है क्या? क्यों पीछे आते रहते हो बिना वजह ही? इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी फील नहीं करती मैं तुम्हारे लिए, और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ, ये बात भी तुम्हें पता है, लेकिन नहीं, फिर भी तुम्हें इस तरह हर वक्त पीछे ही। विराज को इस तरह से मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखकर सुनैना एकदम से उस पर बरस पड़ती है और इतने टाइम से जो कुछ उसके मन में था वो आखिरकार बोल ही देती है। विराज को इतना कुछ सुनने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद आदित्य ने उसे काफी कुछ बोला होगा और सुनैना उसे पलटकर जवाब नहीं दे पाई, तो उसी की फ्रस्ट्रेशन वो उस पर निकाल रही है, और इन सब में सुनैना की कोई गलती नहीं है। विराज अपने मन में ही ये सब सोच लेता है और सुनैना की तरफ उसी तरह मुस्कुराते हुए देखकर बोलता है, अरे सुनैना, तुम क्यों इस तरह से परेशान हो रही हो? मैं तो बस एक दोस्त की तरह ही तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। वो तुम्हारा खड़ूस और गुस्सैल पति, उसने तुमसे ज्यादा बुरा बर्ताव तो नहीं किया ना? कल वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मेरा पति बिल्कुल भी खड़ूस और गुस्सा नहीं है। तुम उसे जानते तक नहीं विराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा कुछ भी बोलने की? और रही बात उसने कल जैसा भी बर्ताव किया, वो हम दोनों पति पत्नी के बीच की बात है। तुम कौन होते हो हमारे बीच कुछ भी बोलने वाले? और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। विराज की बात सुनकर सुनैना एकदम से भड़कते हुए बोलती है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि विराज उसके और आदित्य के मामले में इस तरह बार बार बीच में घुसने की कोशिश करता था। सुनैना की ये सारी बातें विराज के बिल पर अब काफी गहरी चोट कर रही थीं, और इस तरह विराज की बात पर सुनैना के इतना गुस्सा करते हुए और इतने हक से आदित्य को अपना पति बोलने पर विराज को अब सच में बहुत बुरा लग रहा था, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी अब गायब हो चुकी थी। वो थोड़ा सा सदमे में जाता हुआ सुनैना की तरफ बिना कुछ बोले देख रहा था, और फिर सुनैना की बात खत्म होने पर काफी तंजिया लहजे में बोलता है, ओ हाँ, तुम्हारा पति और तुम उसकी पत्नी, हाँ हाँ, सॉरी, मेरी गलती है, मैं ही शायद भूल गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। लेकिन सुनैना विराज की इस तरह की बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, और विराज की ये सारी बातें सुनकर वो काफी बोरियत से एक सांस भरती है और तुरंत पलटकर वहां से कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाने लगती है, और विराज ठगा हुआ सा वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में अब शायद आंसू भरे थे और दिल में कहीं कुछ टूट जाने का दर्द भी था। तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, तो फिर वो जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू अपने हाथ से पोंछने की कोशिश करने लगता है। क्रमशः